Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Teesri baar bola ki, mujhe kisko denge? Hitashri, bataiye na, mujhe kisko denge? जब बार बार व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई आचरण होता है, कोई कर्म होता है, कोई बात होती है, तब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। ये नियम है, होता यही है। आप लोगों को तो शायद ना भी आता हो। आता है? कब आता है? तभी आता है जब हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। बस गुस्से का, क्रोध का कारण ही यही है। जब व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होने लगता है, कोई बात सामने आती है जैसा हम नहीं सुनना चाहते, जैसा हम नहीं देखना चाहते, जैसा हम नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, वो शब्द, वो दर्शन, वो वस्तु जब हमें हमारे सामने आएगी, निश्चित रूप से क्रोध आएगा। नचिकेता के पिता का भी यही हुआ। जब आवेश, जब क्रोध आ गया तो कहते हैं, मरते हुए त्वाददामी, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। क्रोध में ऐसा ही होगा। क्रोध एक आग है ना, और जहां आग होगी तो वहां अंगारे ही निकलेंगे। आग तो अंगारे निकालेगी, अब ये क्रोध भी एक आग है, और जहां ये आग प्रकट होगी, जिस दिल में, जिस हृदय में, तो शब्दों के द्वारा, अंगारों के जैसे शब्द निकलेंगे बाहर। जैसे अंगारा कहीं भी गिरेगा, जिस पर गिरेगा उसको जलाएगा। जब क्रोध जन्य शब्द होंगे तो शब्द भी ऐसे होंगे कि अपने मुंह से निकल करके दूसरे को जला देंगे। पर इतना भी निश्चित है कि पहले स्वयं को जला करके ही निकलेंगे, अंदर वाले को। इसलिए मैं बहुत बार निवेदन करता हूं कि क्रोध एक बहुत खराब चीज है। क्रोध न आवे उससे पहले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जब क्रोध आवेश हो चुका है, फिर आपके वश की बात नहीं है, आप पराधीन हो जाएंगे। क्रोध आवे उससे पूर्व सावधान रहना है। यह शत्रु, यह दुश्मन है, यह गलत है, यह तो आग है। और आग जिस घर में लगती है, पहले उस घर को जलाएगी, और अपना घर जला करके फिर पड़ोसी के घर को भी जलाएगी। इसी प्रकार से क्रोध तो ऐसी आग है, जिस व्यक्ति के दिल में प्रकट होगा, पहले स्वयं को जलाएगी, उसके विवेक विज्ञान को राख कर देगी, और स्वयं को जला करके ये आग फिर वाणी के द्वारा निकलेगी बाहर, और जिस किसी व्यक्ति के कान से प्रवेश करके उसका भी कलेजा जला देगी, शब्दों से बाहर निकलेगी। तो क्रोध बड़ी खराब आग है, बहुत खराब। और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, यह निर्णय करने की क्षमता नहीं रह जाती है, उसका संयम समाप्त हो जाता है। तो पहले से व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, क्रोध कितना अनर्थ कर डालता है। महाराणा प्रताप की एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी, शायद एक कोई काफी मिली थी मुझे किसी संत की, हो सकता श्रद्धेय प्रेमपुरी जी महाराज की ही लिखी हुई हो। महाराज जी के पास काम मुझे मिली, वो भी स्मरण नहीं आ रहा। उसमें ये घटना लिखी हुई थी, हाथ से लिखी हुई थी। महाराणा प्रताप जो थे वो अपनी मां के भक्त थे, मां उनकी वृद्धा थी, प्रताप युवक थे। सभी लोग एक दिन आंगन में बैठे हुए थे। वृद्धा मां से महाराणा प्रताप ने पूछा कि मां, जल लाऊं, प्यास लगी होगी? तो मां कहते बेटा मुझे प्यास नहीं है, इनकार कर दिया। थोड़ी देर के बाद मां को सचमुच में प्यास लग गई। जब मां को प्यास लगी तो मां ने विचार किया, मैं अपने बेटे को क्यों तकलीफ दूं, अभी तो शरीर काम कर रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, मैं स्वयं ही उठकर के जल ले लूं और पी लूं। तो पुत्र को आदेश दिए बिना स्वयं मां उठी और जहां पानी रखा था वहां से जल का लोटा लिया, और खड़े खड़े पीने का रिवाज नहीं था, बाहर निकल करके पिया जाता था, क्योंकि जहां जल आदि रखते हैं उस स्थान को बड़ा पवित्र मानते हैं, वो तो जल मंदिर है, जरा दूर जाकर के पानी पीना था। वो पानी का भरा हुआ गिलास लोटा हाथ में लिया, बाहर निकलने लगी तो बीच में महाराणा प्रताप का तखत और उस पर बिस्तर लगे हुए थे, वार्धक्य था, हाथ में कंपन होता था। वो पानी का भरा हुआ लोटा हाथ से छूट गया, योगायोग उनके बिस्तरों पर जा गिरा, जहां महाराणा प्रताप के अपने बिस्तर लगे बिस्तरों पर गिर पड़ा। जब बिस्तर गीले हो गए तो प्रताप को क्रोध आ गया, एकदम दृष्टि चली गई, और क्रोध में आकर के मां को कहने लगे, बूटों का दिमाग खराब हो जाता है, मैंने कहा था कि जल पिलाऊं, बोली नहीं, ना कर दिया, और जब प्यास लगी तो बोला नहीं और जाकर के पानी उठा के बिस्तरों पर डाल दिया। और जब क्रोध आता है तो व्यक्ति ऐसे ही बोलने लगता है। उस समय मां चुप हो गई, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला। मां ने देखा कि आखिर गलती मेरी है, बोल दिया होता तो ठीक था, पर मेरा भाव तो यह था कि क्यों मेरे बेटे को कष्ट दूं। मां चुप। महाराणा प्रताप को जो सुनाना था दो पांच खरी खोटी सुना करके चुप हो गए। जब सामने से कोई जवाब न मिले ना, तो बोलने वाला कहां तक बोलेगा, चुप हो गया। सास बहु में झगड़ा होता था, बात पे बात निकल पड़ी, पता नहीं कहां चला गया मैं आज। तो बहु गई एक महात्मा के पास, कहने लगी कि मेरे सास बड़ी खराब है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाहट करती रहती है, बोलती रहती है, मैं तो परेशान हो गई, रोज रोज घर में झगड़ा होता है, महाराज कोई उपाय बताइए, घर में शांति हो जाए। महात्मा ने एक गोल मटोल पत्थर उठा करके बहन को दिया, कहा जब तुम्हारे सास तुम्हें कुछ बोलने लगे तो इसको अपने मुंह में डाल लेना, तुम अपने सास के मुंह में मत डालना, नहीं तो झगड़ा और ज्यादा हो जाएगा, तुम अपने मुंह में डाल लेना, और जब तक तुम्हारी सास कुछ बोलती रहे इसको तुम अपने मुंह में ही रखना, शांति हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद देखना तुम्हारे घर में यह खटपट बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। वही उपाय किया, जब घर जाते ही सास को उसके आने लगी तो मुंह में डाल लिया। देखती है सास की आज कोई जवाब नहीं दे रही है, थोड़ी देर में चुप हो गई, फिर किसी बात का बहाना बना करके जिसको लड़ाई करना हो तो कुछ ना कुछ, फिर सास बोलने लगी, इतने में बहू ने फिर वापस उसको उठा करके मुंह में डाल दिया। सास चुप हो गई, निकाल करके धो करके रख दिया। 10-5 दिन यह प्रक्रिया चली तो घर में शांति हो गई, और कोई दवाई कोई औषधि और कुछ नहीं, मुंह में पत्थर डाल दिया तो बहू बोल नहीं पाती थी, जवाब नहीं दे पाती थी, शांति हो गई। ये नियम है, एक तरफ से यदि चुप हो जाए तो दूसरी ओर वाला अपने आप चुप हो जाएगा, शांति हो जाती है। यही स्थिति है, मां ने देखा कि मेरे से गलती हुई, चुप रहूं, महाराणा प्रताप भी चुप हो गए, वहीं बात शांत समाप्त हो गई। दूसरे दिन फिर ऐसे ही बैठे और आज महाराणा प्रताप कहते, मां जल लाऊं, प्यास लगी होगी, क्योंकि गुस्सा शांत हो चुका था, वो कल की बात है, मां जल लाऊं, तो मां ने देखा कि अब ये ठंडा है तो मुझे गर्म होना पड़ेगा। मां कहने लगी, रे प्रताप तू जल पिलाएगा, तेरे लक्षण है, तेरा जैसा निकम्मा पैदा होते मर जाता तो अच्छा था, मेरे दूध को लज्जाने का काम करता है, तो क्या सेवा करेगा मेरी? तो ऐसा तो वैसा आओ मांस माने लगी। प्रताप समझ गए कि मेरी कल की गलती का यह दंड मिल रहा है। प्रताप बड़े शांति से धीरे से कहते, मां मैं आपकी सेवा करूंगा, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैं क्यों गुस्सा कर रही हूं? तो क्यों गुस्सा करता है? मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं? कल क्या किया था तूने? ओ कल तो मां तुमने मेरे बिस्तर गीले कर दिए थे, सारा काम बिगाड़ दिया, इसलिए बोलना पड़ा था। मां कहती है कि बिस्तर गीले कर दिए तो क्या हो गया? मां उन गीले बिस्तरों पर नींद कैसे आएगी? क्यों नहीं आएगी? प्रताप कहते हैं कि मां गीले बिस्तरों पर सोने पर तुमको नींद आ सकती है क्या? मां कहती है कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आज बोलता है कि गीले बिस्तरों पर तुम्हें नींद आ सकती है क्या? अरे जब तुम्हारा यह शरीर एक डेढ़ बलान का मुश्किल से था, एक रात में कितनी बार तुम बिस्तर गीले करते थे और मेरे पास सोया करते थे, मेरे बिस्तरों पर लेट सोते थे। बार बार मेरी नींद टूटती थी, मैं देखती थी कि बच्चे ने बिस्तर गीले नहीं कर दिए हैं, और जब देखा कि इधर गीले कर दिए तो तुम्हें सूखे की तरफ सुलाती और मैं गीले पर सोती थी। दोबारा नींद टूटी, देखा कि इधर भी बिस्तर गीले कर दिए हैं, मैं तुम्हें अपने सीने के ऊपर सुलाती थी और रात भर उन सर्दियों की रात्रियों में आराम से गीले बिस्तरों के ऊपर सोया करती थी। एक बार नहीं तो एक समय उस रात्रियों मैंने गीले बिस्तरों पर गुजारी बेटा, और आज कहता है कि तुम्हें गीले बिस्तरों पर नींद आ सकती है। महाराणा प्रताप ने जब सुना, बात समझ में आई कि मां का कितना ऋण मेरे ऊपर है। कान पकड़ा और बोले कि आगे से यह बेटा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, मैं क्षमा चाहता हूं। एक दिन जब मां का ऋण ध्यान में आया कि कितना कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा पड़ा है, कितने मेरे लिए कष्ट उठाया है मां ने, एकदम श्रद्धा का भाव आ गया और महाराणा प्रताप चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। इसलिए कहने का मतलब यह है, क्रोध जब आता है तो व्यक्ति का होश चला जाता है, लेकिन जब विवेक आता है तो कर्तव्य की स्मृति आ जाती है। जब विवेक आया प्रताप को तो मां के चरणों में गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगने लग जाते हैं। विवेक बहुत बड़ा साधन है, इसलिए इसी साधन को लेकर के नचिकेता ने पूछा, विवेक से विचार से पूछा। आज यहां देखते कि विपरीत है, पिता को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध तो अनर्थ ही करेगा, इसलिए गुस्से में आकर के पिता कहते हैं, मरते हुए त्वाद दामी, अरे तुझे मौत को मृत्यु को देता हूं, यमराज को देता हूं। क्रोध में कभी ऐसे ही बोलते हैं, तुझे मर जाना चाहिए था, हम तो हैरान हो गए तुम्हारे कारण, परेशान हो गए, हमने सोचा भी नहीं था मर क्यों नहीं गए, हो जाता है। क्रोध में ऐसा ही निकलता है। अब यहां पिता से बड़ी भारी गलती हो रही है, देखो ध्यान दो, वाजस्रवस यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ का नियम है कि जब यज्ञ में दीक्षित हो जाता है तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यज्ञ में दीक्षित होकर के क्रोध कर रहा है, यह गलत है। इस प्रसंग को देखने से ऐसा लगता है सज्जनों, जो नचिकेता ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा कि अनंदा नाम ते लोका तांस्य गच्छति तादत। नचिकेता के पिता की जो स्थिति है, यह स्थिति उन लोगों को ही देगी जहां आनंद नहीं है। भगवद गीता में बताया गया है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन मात्मन काम क्रोधस तथा लोभ तस्मादेत त्रयम तेजेत। तीन नरक के दरवाजे हैं, इन तीनों में घुस करके तो नरक में ही प्रवेश होता है। काम क्रोध तथा लोभ, तीन दरवाजों में घुस गए हैं तो फिर नरक में ही जाना पड़ेगा। और नचिकेता के पिता के जीवन में आप देखो तो तीनों ही विद्यमान है। सबसे पहले आया उषण हवई वाजस्रवस, वो वाजस सर्वस काम्यमान है, कामना से संयुक्त है, इच्छावान है। तो ये कामना काम को बताया नरक का द्वार, दूसरा क्रोध को नरक का द्वार बताया जो इनके अंदर प्रकट हो गया है, मरते हुए तो आददामी, और तीसरा लोभ को नरक का द्वार बताया जो लोभ अच्छी अच्छी गऊ को रखवा करके और निकम्मी गऊ का दान करवा रहा है। काम क्रोध और लोभ तीनों ही यहां पर विद्यमान है, इसीलिए नचिकेता ने भी विचार किया था कि ये तीनों नरक के द्वार पर पिताश्री खड़े हैं तो जाएंगे किधर, उस द्वार के भीतर जो होगा वही तो प्राप्त होगा, इस दृष्टि से उसने कहा था। और सचमुच में ये नरक के द्वार पर जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है ना तो उसको दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, आवेश में आकर के बोल दिया मरते वे त्वाद दामे, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। मगर पुत्र को देखिए आप, विवेकशील व्यक्ति को देखिए, इस नचिकेता को आप देखिए, जो ही पिता ने कहा कि तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जरा एकांत में चले गए, थोड़ा विचार किया, चिंतन करने लगे। अच्छा, पिता ने जो कहा कि मृत्यु को देता हूं तो कहीं पहले जैसी स्थिति तो नहीं है, पहले भी क्रोध में बोल दिया था कि मृत्यु को देता हूं और मैं वहां जाकर के आया, स्वर्ग दर्शन करके आया, यमने वापस लौट आया और जिस स्वर्ग का वर्णन किया उसको चाहने के लिए पिताश्री यज्ञ कर रहे थे, कहीं उसी क्रोध में आकर के कहा है, अथवा कोई ऐसा आवश्यक काम है जो यमराज के पास जाकर के उसको मैं ही पूर्ण कर सकता हूं, जिसके लिए पिताश्री मुझे यमराज को देना चाहते हो, यह कहने का प्रयोजन क्या है, किस दृष्टि से, कौन से तात्पर्य से बोले। यह विवेकशील व्यक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है, बात को सुनते ही उसकी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, कौन क्या कहता है उसको सुनो, सुनकर के फिर उसका विचार करो, उसका चिंतन करो कि किस दृष्टि से इन्होंने ये बात कही होगी, उसके बाद उसका जवाब देना चाहिए। तभी तो बड़ी प्रसिद्धि है कि भगवान ने सुनने के लिए कान दो दिए हैं मगर जवाब के लिए जिह्वा एक दी है। दो बार सुनो, अच्छी प्रकार से सुनो, फिर उसका मनन करो, चिंतन करो, फिर उसका जवाब दो, उसकी कोई प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए विचार पूर्वक। यही कारण था कि नचिकेता एकांत में बैठ गए और विचार करने लगे कि कौन सा काम पड़ गया है जो मेरे द्वारा ही यमराज से पूरा किया जा सकता है। बहुनामेमि प्रथमः बहुनामेमि मध्यमः किम स्वद यमस्य कर्तव्यम् यद मया अद्य करिष्यसि करिष्यति। वो विचार करता है कि मेरे पिताश्री के बहुत सारे शिष्य हैं, पुत्र हैं, पुत्र और शिष्य को एक ही कोटि में लिया जाता है, शिष्य को पुत्र बोल देते हैं, पुत्र शिष्य भी होता है, एक समान कोटि है। वाजस्रवस बहुत बड़े विद्वान हैं, सैकड़ों शिष्य उनके पास विद्या अर्जित करते हैं, उन शिष्यों में नचिकेता भी उनका पुत्र और शिष्य दोनों है। नचिकेता विचार करने लगे कि बहुनाम प्रथम एमी, हमारे पिताश्री के बहुत सारे शिष्यगण हैं और उन शिष्यों में जो मेरा स्थान है, कुछ में तो मेरा प्रथम स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है मेरी, बहुनाम मध्यम एमी, कुछ हमसे मेरे से भी कुशल विद्यार्थी हैं, कुशल शिष्य हैं मेरे पिता के, उनमें मैं मध्यम श्रेणी से आता हूं, द्वितीय नंबर पर। बहुनाम एमी मध्यम, बहुत सारों में मध्यम गति से मैं प्रवेश करता हूं, मेरी स्थिति है वहां पर। किम सुद्यमस्य कर्तव्यम, अब यम के लिए ये कौन सा कर्तव्य आ गया है जो पिताश्री मेरे से ही उसको पूरा करवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे से कुशल भी हैं, मेरे जैसे भी और भी शिष्य हैं, कैसे करवाना चाहेंगे। यहां नचिकेता इस बात को संकेत दे रहा है कि शिष्य या पुत्र सब समान नहीं होते हैं, परंतु नचिकेता यह कहता है कि मैं प्रथम और द्वितीय श्रेणी तक हूं, तृतीय श्रेणी मेरी नहीं है। क्योंकि संतान को भागवत में चार स्तर पर विभक्त करके देखा गया है। संतान चार तरह की भागवत में बताई गई है। जब राजा ययाति ने अपने ही पुत्रों से उनकी जवानी मांगी, क्योंकि शुक्राचार्य के शाप के कारण ययाति वृद्ध हो चुके थे, और जब पुनः उनसे गिड़गिड़ाने लगे, याचना करने लगे कि मैं पुनः युवान हो जाऊं, तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारे पांच संतान हैं, जो भी पुत्र उसकी जवानी तुम्हें दे दें, संकल्प करे, तो तुम जवान हो जाओगे और तुम्हारा वार्धक्य उस पुत्र में चला जाएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा। वो राजा ययाति अपने बेटों से ही जाकर के जवानी की याचना करते हैं। चार पुत्रों ने तो नकारात्मक उत्तर दे दिया, पिताजी शर्म आने चाहिए ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें, परंतु सबसे जो छोटा पुत्र था पुरु, उसने कहा कि पिताश्री, संसार में संतान चार तरह की देखने में आती है, उत्तमस्तु चिंतितम कुर्यात प्रोक्त कार्य तो मध्यम, अधमो अश्रद्धया कुर्यात अकृतो चरितम पितुः। उत्तम संतान वो कही जाती है चिंतितम कुर्यात, जो अपने माता पिता की सोची हुई बात है, चिंतित बात है, विचार किया हुआ है, उस दिल के हृदय के मन के विचार को समझ जाए कि ये मेरे लिए या मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं, और बिना कहे उनका मुखमंडल देख कर ही समझ जाए और उस कार्य में लग जावे, उत्तम संतान कही जाती है। प्रोक्त कार्य तो मध्यम है, मध्यम संतान वो कही जाती हैं जिसको माता पिता ने कहा कि तुम ऐसा करो, और जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो तो बड़ी श्रद्धा के साथ उनके इस आदेश को स्वीकार कर ले, वो मध्यम संतान है, श्रद्धा से मान रहा है पर इतना तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है कि बिना कहे ही समझ गया होता, बोलने पर समझा और उस कार्य को किया, वो मध्यम संतान। अधमो अश्रद्धया कुर्यात, अधम संतान वो कही जाती है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे मगर भावना से, आस्तिक के बुद्धि से, श्रद्धा से न करे, किसी न किसी डर के भय के कारण करे, डांटेंगे, फटकारेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, शिष्टाचार के विरुद्ध होगा, आदि आदि लोक भय से माता पिता की आज्ञा का पालन करे, भाव तो नहीं है लेकिन लोक भय है, डर है, उस डर से जो पालन करने वाली संतान है, कहा वो अधम कही जाती है। और जो साफ साफ इनकार ही कर दे, नाना हमसे होने वाला नहीं है, तुमसे हो तो करो, न हो तो बैठे रहो, किसी से करवाओ, ये मेरे वश का नहीं है, मैं नहीं चाहता इस काम को, आपकी लाइन दूसरी है, मेरा विचार दूसरा है, आपके और मेरे विचार मेल नहीं खाएंगे, जो पिता के विचारों में अपने विचार नहीं मिला सकता, उनकी राय में अपनी राय नहीं मिला सकता, उनके आदेश को किसी और के लिए समझता हो, ऐसे नकारात्मक जवाब देने वाली संतान को कहा उच्चरितम पितु। वो संतान क्या कहें, उसको तो कहा जाए कि वो माता पिता की गंदगी है। जैसे सायं भोजन की और प्रातः गंदगी बहा देते हैं, मानो माता पिता ने एक गंदगी बहा दी दुनिया में, वो संतान कहलाने की क्या अधिकारी है। इसी प्रकार से यहां पर नचिकेता विचार कर रहा है, परंतु मेरी घड़ी मना करती है कि कल करना। बहुत सुंदर विचार कर रहा है, उस विचार को कल आपको सुना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।